लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, सीरिया में पिछले 14 वर्ष से जारी बर्बर युद्ध और लंबे तानाशाही शासन के पतन के बाद आम नागरिकों के पास एक स्थिरता भरे व शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर है। 8 दिसंबर रविवार तड़के विद्रोही लड़ाकों द्वारा राजधानी दमिश्क पर अपना नियंत्रण स्थापित किए जाने और राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर जाने की खबरों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने अपने वक्तव्य में यह बात कही। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में पश्चिमोत्तर सीरिया में सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम समेत अन्य हथियारबंद गुटों ने सीरियाई सरकार के नियंत्रण वाले अलेपो, होम्स, हमा शहरों पर अचानक बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे और एक के बाद दूसरे शहर को अपने कब्जों में ले लिया था। महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि इस संवेदनशील समय में संयम बरतना होगा, हिंसा से बचा जाना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि सीरिया पिछले करीब 14 वर्षों से क्रूरतापूर्ण युद्ध की आंच में झुलस रहा है, मगर अब देश की जनता के पास एक स्थिरतापूर्ण व शांतिमय भविष्य की ओर बढ़ने का ऐतिहासिक अवसर है। यूएन प्रमुख ने कहा कि सीरिया की संप्रभुता, एकता, स्वाधीनता व क्षेत्रीय अखंडता को फिर से बहाल किया जाना होगा। उन्होंने कहा कि वह इस हिंसक टकराव का खमियाजा भुगतने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सीरिया को न्याय, आजादी, समृद्धि व आपसी मेल मिलाप के मार्ग पर आगे बढ़ने में सीरियाई लोगों के साथ हैं। यही एक रास्ता है जो कि सीरिया को सतत शांति की दिशा में ले जाता है। उधर लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम लागू होने के एक सप्ताह के भीतर लाखों लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और गाजा में भी इसराइल सैन्य बलों की नाकेबंदी और जगह खाली किए जाने के आदेशों के कारण बहुत से लोग कठिन हालात में जीने को विवश हैं। मध्य पूर्व के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने बताया है कि तुर्की के रास्ते सीरिया में मानवीय सहायता पहुंचाया जाना फिलहाल जारी है। यूएन खाद्य सहायता एजेंसी के एक सहायता अधिकारी सामेर अब्दुल जाबेर ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को बताया।
It's at a breaking point at the moment in Syria. After 13 or 14 years of conflict, over 3 million Syrians are severely food insecure.
Samir Abdul Jaber कह रहे थे कि सीरिया में 13-14 वर्ष के गृह युद्ध के बाद ये बिल्कुल बिखराव का दौर है। वहां 30 लाख से अधिक लोग गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है। WFP के अनुसार पिछले कुछ दिनों में हिंसा भड़कने के कारण विस्थापितों की संख्या 15 लाख तक पहुंचने की संभावना है और विशाल स्तर पर मानवीय सहायता की जरूरत होगी। वहीं पड़ोसी देश लेबनान में संयुक्त राष्ट्र ने 6 लाख से अधिक लोगों की सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने इसराइल व हिजबुल्लाह के बीच लगभग एक सप्ताह पहले युद्ध विराम पर सहमति होने के बाद अपने घर लौटना शुरू किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठ मानवीय सहायता अधिकारी एडम वसोर्नू ने लेबनान में बिना फटे हुए विस्फोटकों और आयुध सामग्री के बिखरे होने की आशंका व्यक्त की है। उधर इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में मानवीय सहायता कर्मियों ने बताया है कि उत्तरी गाजा में इसराइल की 2 महीनों से जारी नाकाबंदी के कारण लोग जानलेवा हिंसा से बचने के लिए दक्षिणी इलाके की तरफ भागने को विवश हैं। यूएन प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने न्यूयॉर्क में बताया है कि उत्तरी गाजा से 28 नवंबर के बाद से लगभग 8,000 लोगों को गाजा सिटी की तरफ भागना पड़ा है।
बुधवार को जिनेवा, कुवैत और नैरोबी में वैश्विक मानवतावादी अवलोकन पर 2025 की रिपोर्ट जारी की गई। यह लड़ाकों द्वारा युद्ध के कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून को अधिक सम्मान देने व समझने पर जोर देने का एक अवसर भी है, जिसे नागरिकों और सहायता टीमों की रक्षा हो सके, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड संख्या में उनकी मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी ने जिनेवा में बुधवार को आगाह करते हुए कहा कि अनगिनत अंतहीन टकराव व युद्ध, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की घोर उपेक्षा की वजह से वर्ष 2025 में 30.5 करोड़ लोगों को जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र की मानवीय आपदा राहत समन्वयक एजेंसी के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जिनेवा में पत्रकारों को बताया,
We are dealing with a poly crisis right now globally, and it is the most vulnerable people in the world who are paying the price.
आपात राहत मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर कह रहे थे कि हम इस समय पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं, जिसका खामियाजा सबसे संवेदनशील हालात में रहने वाले लोग चुका रहे हैं। हम हिंसक टकरावों के प्रभाव से जूझ रहे हैं और ऐसे लंबे समय से जारी संकट जिन्होंने गंभीर रूप धारण किया है। टॉम फ्लेचर ने 30 से अधिक देशों, शरणार्थियों को आश्रय देने वाले क्षेत्रों के लिए $47 अरब की राशि जुटाने की अपील की है, ताकि जरूरतमंदों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की जा सके। आशंका है कि 30.5 करोड़ जरूरतमंद लोगों में से केवल 19 करोड़ तक ही सहायता पहुंचाई जा सकेगी। इसका एक बड़ा कारण है सहायता धनराशि की कमी, जबकि गाजा, सूडान, लेबनान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सीरिया, यूक्रेन समेत अन्य कई देशों में मानवीय सहायता आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि दक्षिण एशिया में वर्ष 2025 के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं, अन्य प्रकार के संकटों, स्वास्थ्य आपदाओं और आर्थिक झटकों के कारण लगभग 4.7 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। इन बच्चों में अधिकतम संख्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में होने की संभावना है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया के देशों में अगले वर्ष के दौरान लगभग 2.8 करोड़ लोगों तक जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए $1.6 अरब की रकम जुटाने की अपील जारी की है। इस सहायता अपील से लगभग 1.6 करोड़ बच्चे भी लाभान्वित होंगे। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक संजय विजय सेकरा ने बताया है कि क्षेत्र में लाखों बच्चे लगातार गंभीर होती जलवायु संबंधी आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें बाढ़ें, भूस्खलन, समुद्री तूफान और सूखा स्थितियां शामिल हैं। बच्चों के लिए इन चुनौतियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्थिक संकटों और राजनीतिक अस्थिरता के हालात के कारण और भी बढ़ोतरी हो रही है। संजय विजय सेकरा ने कहा कि इनके परिणाम स्वरूप बच्चों की जिंदगियां गंभीर जोखिम में पड़ती हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के साथ साथ अन्य बुनियादी जरूरतों में भी गंभीर बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
Oh,
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस 15 दिसंबर को अपनी 47वीं प्रेरितिक यात्रा में फ्रांस के कोसिका द्वीप की यात्रा कर रहे हैं। सौंदर्य के द्वीप कहे जाने वाले इस फ्रांसीसी द्वीप में पुरोहितों एवं श्रद्धालुओं से मिलने से पहले वे भूमध्य सागर में लोकप्रिय धर्म पारायणता पर सम्मेलन में भाग लेंगे। एक ओर आम लोगों का विश्वास उनकी लोकप्रिय धर्म पारायणता, तीर्थयात्रा, भक्ति के कार्यों, पारंपरिक गीत और प्रार्थनाओं में व्यक्त होता है। दूसरी ओर भूमध्य सागर अपनी चुनौतियों के साथ युद्ध की प्रतिध्वनि प्रवास की त्रासदी, जिसने मारे नोस्ट्रम अर्थात हमारे सागर को एक खुली हवा वाले कब्रस्थान में बदल दिया है। 15 दिसंबर को पोप फ्रांसिस नेपोलियन के जन्म स्थान कोसिका की प्रेरित यात्रा करने वाले हैं, जो जंगलों, समुद्र तटों और पहाड़ों से घिरा है और इस समय मानव निर्मित पर्यावरणीय संकटों के खतरे में है। इन दोनों तत्वों को एक साथ लाएगी। सितंबर में दक्षिण पूर्व एशिया एवं ओशिनिया की लंबी तीर्थ यात्रा की तुलना में यह 12 घंटे से भी कम की यात्रा है, जिसमें पोप फ्रांसिसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ लगभग 40 मिनट तक आमने सामने बातचीत करेंगे। यह राजधानी शहर अजोशियो में पोप की पहली यात्रा होगी। हालांकि अंजेलो रंकली, जो बाद में पोप जॉन 23वें बने, 1952 में पेरिस में प्रेरितिक राजदूत के रूप में द्वीप का दौरा किया था। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने संत पापा जॉन 23वें की यात्रा को पत्रकारों के साथ सामान्य ब्रीफिंग में याद किया। भूमध्य सागर में लोकप्रिय धार्मिकता पर सम्मेलन का हवाला देते हुए ब्रूनी ने कहा, पोप वहां द्वीप के ख्रिस्तों से मिलने तथा लोकप्रिय धर्म पारायणता की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं, जो अजाशियो के धर्माध्यक्ष कार्डिनल फ्रांसिस जेबियर द्वारा आयोजित एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है। संत पापा सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, जिसमें फ्रांस, इटली और स्पेन सहित भूमध्य सागर के आसपास के विभिन्न देशों के धर्माध्यक्ष, शिक्षाविद एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे। संत पापा अपनी यात्रा में रविवार 15 दिसंबर को सुबह 7:45 पर रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से अजाशियो के लिए रवाना होंगे। वहां उनका स्वागत फ्रांस के गृह मंत्री एवं विदेश मंत्री करेंगे। क्रिसमस के लिए अपने दूसरे उपदेश में परमधम पीठ के उपदेशक फादर पासोलिनी ने विश्वास के द्वार विषय पर चिंतन किया। विश्वास एक साहसी चुनाव और केवल एक आशावाद नहीं, बल्कि परीक्षा के समय में आशा को जीवित रखता है और स्वार्थ का प्रतिकारक है। स्वार्थ की ओर प्रवृत्त इस युग में क्या हम विश्वास के बारे में बात कर सकते हैं? और जीवन के कठिन क्षणों में, उन महत्वपूर्ण पलों में जब हमें किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज को खोने का भय होता है, क्या हम तब भी किसी चीज या व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं? ये वे अंतर्निहित प्रश्न हैं जिन्हें परमधम पीठे परिवार के उपदेशक कपुचिन फ्रांसिस्कन फादर रोबर्टो पासोलिनी ने आगमन काल के दूसरे उपदेश के केंद्र में रखा है, जिससे उन्होंने 13 दिसंबर की सुबह पॉल षष्ठम सभागार में पोप और रोमन कुरिया के उनके सहयोगियों के समक्ष रखा। चिंतन के लिए चुना गया विषय है आशा के द्वार, क्रिसमस की भविष्यवाणी के माध्यम से पौत्र वर्ष के उद्घाटन की ओर।
हम आशा की जुबली 2025 को योग्य रीति से मनाने हेतु संत पापा द्वारा घोषित प्रार्थना का वर्ष 2024 के अंतिम चरण में है। आज संत पापा फ्रांसिस ने समझाया कि प्रार्थना करना जानना हमारी सबसे बड़ी गरिमा है। इसी पर संत पापा फ्रांसिस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम नाजुक प्राणी हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना जानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गरिमा है और जब येसु के हृदय के अनुसार प्रार्थना की जाती है तो चमत्कार होते हैं। # प्रार्थना का वर्ष। और संत पापा फ्रांसिस ने वेनिस से, जहां संत लूसिया का शरीर रखा गया है, उसे उसके जन्म स्थान सिसिली शहर में अस्थायी स्थानांतरण के अवसर पर सिराकूसा के महाधर्माध्यक्ष को एक पत्र लिखा। संत लूसिया के पर्व दिवस पर संत पापा ने उन्हें और सिराकूसा की कलीसिया को बधाई दी। सिराकूसा की रहने वाली संत लूसिया सिराकूसा महाधर्म प्रांत की संरक्षिका संत हैं। लूसिया का लैटिन शब्द लक्स है, जिसका अर्थ है प्रकाश। वह स्पष्ट आँखों से उन लोगों को देखती थी जो उसे मारना चाहते थे, और उसने ऐसा किया क्योंकि वह एक ख्रिस्तीय थी और उससे भी पहले बदला लेने के लिए उस प्रेमी को नहीं कहने के बाद जो मसीह के लिए खुद को समर्पित करने के उसके फैसले का सम्मान नहीं करना चाहता था। संत लूसिया की शहादत में कालातीत मूल्यों की एक दुनिया है। स्पष्ट, पारदर्शी, ईमानदार होना, जीवन की अस्पष्टताओं और आपराधिक मिली भगत से बाहर निकलना, और एक स्वतंत्र महिला का उदाहरण है जो दर्शाता है कि एक बाहर निकलने वाली कलीसिया में काम और स्त्री शब्द कितना आवश्यक है, जो संस्कृति और सह अस्तित्व में खमीर और प्रकाश है। और गुरुवार 12 दिसंबर को ग्वादालूपे की माता मरियम के पर्व पर सन पेत्रुस महागिरजा घर में संत पापा फ्रांसिस ने पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान किया, जिसमें दुनिया भर से लगभग 4000 श्रद्धालु शामिल हुए। अपने प्रवचन में संत पापा ने पर्व के तीन पहलुओं पर विचार किया, तिलमा, माँ और गुलाब। संत पापा ने मरियम के मातृत्व की सुंदरता का वर्णन जुआन डिएगो द्वारा पाए गए और तिलमा में रखे गए गुलाबों में प्रकट होने के रूप में किया। यह मातृत्व कुछ हद तक धर्माध्यक्षों के अविश्वासी दिलों में विश्वास लाने का चमत्कार करता है। तिलमा, गुलाब और जुआन डिएगो। संत पापा ने चेतावनी दी कि इससे परे ग्वादालूपे के रहस्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह झूठ है और इसका इस्तेमाल विचारधाराओं के लिए किया जा रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने दोहराया कि ग्वादालूपे की माता मरियम के प्रकट होने का महत्व उनका सम्मान करना और वास्तव में उन्हें एक माँ के रूप में हमसे बातें करते हुए सुनना है। संत पापा ने जोर देकर कहा कि ग्वादालूपे की माता का पूरा संदेश इस पंक्ति में अभिव्यक्त किया जा सकता है, डरो मत, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं जो तुम्हारी माँ हूँ। यह पंक्ति हमारे पूरे जीवन में दोहराई जानी चाहिए, जिसे संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।